उकाज का एक बाजार था। इस बाजार में बहुत बड़े बड़े मेले लगा करते थे और इन मेलों में बड़े बड़े खतीब आते और अपनी खिताबत के जौहर दिखाते। बड़े बड़े शायर इस मेले में शरीक होते और अपनी शायरी लोगों को पढ़कर सुनाते थे। और जिस शख्स की शायरी एट द टॉप ऑफ द लिस्ट होती थी, जिस शख्स की शायरी सबसे अच्छी समझी जाती थी, उसके कलाम को काबतुल्लाहिल मुशर्रफा की दीवार के साथ लटका दिया जाता था। सात ऐसे कलाम मशहूर हैं कि जिन्हें काबतुल्लाहिल मुशर्रफा की दीवार के साथ लटकाया गया। कलाम तो और भी लटकाए जाते थे, लेकिन सात कलाम ऐसे थे जो मशहूर थे। गोया कि ये उनके अशार को एक ऑनर दी जाती थी, एक एजाज दिया जाता था कि आप लोग ऐसे हैं कि आप मैचलेस हैं, आपके अशार का कोई मुकाबला करने के काबिल नहीं है। तो इन्हीं शुआरा में से एक शायर लबीद बिन रबिया भी थे। इसके कलाम को काबतुल्लाहिल मुशर्रफा की दीवार के साथ जब लटकाया गया तो बहुत गुरूर के आलम में ये लोगों के सामने पुकार कर कह रहा था कि लोग जानते हैं कि लबीद बिन रबिया जैसा शायर पूरे अरब में नहीं है, है कोई कि जो मेरे कलाम के मिसल कलाम लेकर आए। अगले दिन किसी शख्स ने लबीद को कहा कि लबीद, जो तुम्हारा कलाम काबतुल्लाहिल मुशर्रफा की दीवार के साथ लटका हुआ है, इस कलाम के साथ एक छोटा सा कलाम, मुख्तसर सा कलाम लिखा हुआ है, वो न जाने कौन लिखकर चला गया, हमें पता नहीं है, लेकिन जाओ और जाकर उस कलाम को पढ़ो और उस कलाम में जो भी खामियां हैं वो लोगों के सामने बयान करो। लबीद बिन रबिया के जिसके कलाम को काबा शरीफ की दीवार के साथ लटकाया गया था, बहुत गुस्से में आ जाता है और गुस्से के आलम में ये मस्जिद हराम में दाखिल होता है और लोगों को कह रहा था कि ऐ लोगों, तुम जानते हो कि लबीद कितना बड़ा शायर है, मेरे कलाम के साथ जिस शख्स ने भी कलाम लिखा है मैं उसके कलाम को देखता हूं, मैं उसके कलाम के हुस्न या उसके कुब को बयान करके, ये किसी भी शायरी पर तनकीदी जो नोट होता है इसे कहते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन, उसके की तारीफ की जाती है या उसकी मजम्मत की जाती है। तो उसने कहा कि मैं देखता हूं कि मेरे कलाम के सामने किस शख्स को अपना कलाम लिखने की जरूरत हो गई, मैं उस कलाम की सारी खामियां लोगों के सामने बयान करके ये जाहिर कर दूंगा, ये साबित कर दूंगा कि मेरे जैसा शायर कोई नहीं है। जब ये काबतुल्लाहिल मुशर्रफा की दीवार के करीब आता है और उस कलाम को पढ़ता है तो कलाम को पढ़कर वो लबीद बिन रबिया के जो अभी बहुत गुस्से में था, वो लबीद बिन रबिया जो अभी बहुत बड़े दावे कर रहा था, जो कहता था कि मेरे जैसा शायर पूरे अरब में नहीं है, लोगों ने देखा कि वो लबीद बिन रबिया कांपने लग गया, जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, चेहरे का रंग जर्द पड़ गया, जबान बोलने के काबिल न रही। तो लोग कहने लगे कि लबीद, ये क्या हो गया, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे कि मेरे कलाम के मिसल कौन जुर्रत कर सकता है कलाम लिखने की, तो मैं उस कलाम को देखूंगा और उस कलाम की खामियां बयान करके अपनी शायरी का तफव्वुक लोगों के सामने बयान करूंगा कि मेरी जो शायरी है सबसे अच्छी है। लेकिन ये क्या हो गया तुम्हें, तुम कांप क्यों रहे हो, तुम्हारा रंग जर्द क्यों हो गया, परेशानी का शिकार क्यों हो गए, क्या वजह है? तो लबीद बिन रबिया को जब ये सवाल किए जाने लगे तो वो कहता है, वल्लाह मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया, मैं बड़े बड़े फरमा रवाओं के दरबारों में जाकर अपने कलाम को सुनाया करता था, मैं अरब के अलावा अजम में भी गया और अपनी शायरी के जौहर उनके सामने भी दिखाए, لیکن خدا کی قسم یہ جو کلام میرے کلام کے ساتھ کوئی لکھ کر چلا گیا ہے یہ کلام کوئی عام کلام نہیں ہے. یہ کلام اگرچہ تمہیں مختصر معلوم ہو رہا ہے لیکن واللہ ما ھذا کلام البشر یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ رب تبارک و تعالی کا کلام ہے. یہ لبید بن ربیعہ کس وقت کہہ رہا ہے؟ یہ اس وقت لبید بن ربیعہ کہہ رہا تھا کہ جب وہ مسلمان نہیں تھا. اب وہ کلام کیا تھا؟ وہ کلام بہت مختصر تھا. انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ کلام جب لبید بن ربیعہ نے پڑھا تو وہ کہتا ہے واللہ ما ھذا کلام البشر یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. پھر کسی شخص نے اسے تعارف کرایا کہ یہ کلام اللہ رب العزت کے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب نے نازل کیا ہے. تو لبید بن ربیعہ فوراً دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے یہ کلام سن کر.